स्काई एक नज़र घड़ी की तरफ देखता है। इस वक्त तो इंडिया में सुबह हो रही थी, लेकिन स्काई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने फ़ोन के प्राइवेट गैलरी में से एक नंबर निकाला और अगले ही पल उस नंबर पर कॉल कर दिया था। रॉयल ऑफिस। आस्तिक के हाथों में उसका फ़ोन था और वो बस स्क्रीन पर एक नंबर के आने का इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही उसके स्क्रीन पर ये नंबर आता है, आस्तिक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो फ़ोन रिसीव करते हुए कहता है, यस माई सन, मैंने सोचा नहीं था कि इतने बड़े आदमी होकर आपकी नज़र मेरे पैसों पर होगी। वेरी बैड राजा साहब, वेरी बैड। आकाश की बात सुनकर आस्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अपने चेयर पर सर को टिकाते हुए कहता है, बेटा बाप बाप होता है और एक बाप को अच्छी तरह से पता होता है कि उसके बेटे को कौन सी चीज़ कितनी हद तक देनी चाहिए। आस्तिक की बात सुनकर आकाश के हाथों की मुट्ठियाँ कस गई थी और वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, तो इतने सालों बाद आपको बाप बेटे वाला खेल खेलना है? नहीं, कोई खेल नहीं खेलना है, बल्कि तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अरुणिमा तुम्हें वापस बुलाना चाहती है। आस्तिक ने जैसे ही ये कहा, आकाश के हाथ ढीले पड़ गए और उसका चेहरा हल्का नरम पड़ गया था। आपकी एक्स वाइफ मुझे वापस बुलाना चाहती है, इसके लिए आपने मेरे सारे बैंक अकाउंट को सीज करवा दिया। वैसे भी मैंने उनसे 2 साल पहले बात तो की थी ना। आकाश की ये कहने पर आस्तिक की आंखें छोटी हो जाती हैं और उसने कहा, वो तुम्हारी माँ है। 2 साल पहले तुमने अपनी माँ से सिर्फ कुछ देर के लिए बात की थी और तुम चाहते हो कि वो उसके सहारे सारी जिंदगी बिता दे। और हाँ, वो मेरी एक्स वाइफ नहीं है, आज भी वो मेरी वाइफ है, डिवोर्स नहीं हुआ है हमारा। और अरुणिमा मुझसे दूर है क्योंकि वो मुझसे दूर रहना चाहती है और उसकी खुशी मेरे लिए सबसे पहले मायने रखती है। वरना ये बात तो तुम्हारी माँ भी अच्छी तरह से जानती है कि अगर मैं अपनी पर आ जाऊँ तो कल के कल ही अरुणिमा के साथ साथ तुम भी मेरे सामने मौजूद रहोगे। राजा साहब, आप मुझे धमकी दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आपकी धमकियों से नहीं डरता हूँ। और हाँ, आपने जो मेरे सारे अकाउंट सीज करवाए हैं उन्हें जल्द से जल्द ओपन कर दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जिसे करने की आपको उम्मीद भी नहीं हो। क्योंकि अब आपके सामने वो छोटा सा बच्चा नहीं है जो अपने माता पिता के लिए जिद किया करता था, बल्कि वो बच्चा तो कहीं दूर खो गया है। अब आपका सामना होगा तो स्काई के साथ होगा। आकाश ने गुस्से में दांत पीसते हुए आस्तिक से कहा, तो आस्तिक कहता है, हाँ ये बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया मिस्टर स्काई, कि स्काई को तुम वहीं अमेरिका में ही छोड़कर आना। जब तुम इंडिया में कदम रखोगे ना, तो तुम अरुणिमा के आकाश होने चाहिए। 2 हफ्ते बाद अमृता की शादी है और वो चाहती है कि उसकी शादी में उसके दोनों भाई मौजूद रहें। बिजनेस क्लास की टिकट भेज रहा हूँ, पैकिंग कर लो। जिस दिन तुम इंडिया आ जाओगे, तुम्हारे सारे अकाउंट अपने आप ओपन हो जाएंगे, वरना चाहो तो वहां रहकर देख सकते हो। अगर मैं यहाँ बैठे बैठे वहां पर तुम्हारे सारे अकाउंट ब्लॉक करवा सकता हूँ, तो सोचो और क्या क्या करवा सकता हूँ। अच्छे बच्चे की तरह अपने पापा की बात मानो और चुपचाप इंडिया वापस आ जाओ। उसके बाद आस्तिक ने कॉल काट दिया। आकाश हैरानी से फ़ोन को अपने हाथों में घूरते हुए देख रहा था और अगले ही पल उसने फ़ोन को दीवार पर दे मारा। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आई हेट यू राजा साहब, मैं आपसे नफ़रत करता हूँ और मैं नफ़रत करता हूँ हर एक उस इंसान से जिसने मुझे खुद से दूर कर दिया था। मैं तो एक छोटा सा बच्चा ही तो था, लेकिन आपने उस छोटे से बच्चे को खुद से दूर कर दिया था, मुझे मेरी माँ से दूर कर दिया था। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना आपकी और ना ही किसी और की। मैंने अपनी दुनिया खुद बनाई है और इस दुनिया में मैं किसी को भी दखल अंदाजी करने नहीं दूंगा, आपको भी नहीं राजा साहब। आप चाहते हैं ना मैं इंडिया आऊं, ठीक है मैं इंडिया आ रहा हूं, लेकिन इस बार आप खुद मुझे वहां से वापस भेजेंगे, क्योंकि इस बार इंडिया में वो मासूम सा सीधा साधा बच्चा आकाश नहीं आ रहा है, बल्कि डेविल गॉड स्काई आ रहा है। इंतजार कीजिए राजा साहब, आपकी दुनिया में तूफान आने वाला है। देहरादून। अरुणिमा सोफे पर बैठी हुई थी और उसके सामने तीनों लड़कियां खड़ी थीं। अमृता कहती है, बड़ी मम्मी आप आने वाली थी, आपने बताया नहीं। अरुणिमा ने अमृता को देखते हुए कहा, अगर बता देती तो ये बात कैसे पता चलती कि तुम लोग अपने घर से दूर रहकर क्या आतंक मचाती हो। जरा देखो कमरे की हालत क्या बनाकर रखी हुई है, इंसानों के रहने लायक कमरा है ये और लड़कियां होकर तुम लोगों का कमरा इतना गंदा है। पर नीतू जल्दी से कहती है, नहीं आंटी आप गलत समझ रही हैं, एक्चुअली 2 दिन से ना सफाई वाली नहीं आई है, इसलिए कमरा ऐसे फैला हुआ है, वरना हम अपना कमरा बहुत साफ रखते हैं, पूरे हॉस्टल में हमारा ही कमरा है जो सबसे ज्यादा साफ है। अरुणिमा खड़ी होती है और अपने हाथ बांधते हुए कहती है, सफाई वाली नहीं आई है तो तुम लोगों के हाथों में मेहंदी लगी है क्या? तुम लोग अपना कमरा खुद साफ नहीं कर सकते हो, जरूरी है सफाई वाली का इंतजार करना? और अमृता तुम्हारी तो शादी होने वाली है, क्या ऐसे ही अपने ससुराल को भी गंदा रखोगी? मुझे तो अभी से ही आहान की फिक्र होने लगी है। लेकिन अमृता कहती है, नहीं बड़ी मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग अपना कमरा बहुत साफ करते हैं। वो क्या है ना, बस इन दिनों एग्जाम चल रहे थे जिसकी वजह से हम साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और अब बस एक ही एग्जाम रह गया है, उसके बाद तो हम लोग घर ही आने वाले थे। मुझे पता है तुम लोग अपने आखिरी एग्जाम देने के बाद घर ही आने वाले थे, लेकिन जानवी तुम्हारे बारे में फिक्र कर रही थी और मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी, तो सोचा कि जब मैं वापस जाऊंगी तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊं। अमृता धीरे से हाँ में सर हिलाती है तो अरुणिमा उन सबको देखकर कहती है, अब यहाँ पर खड़े क्यों हो, जाओ जाकर अपने एग्जाम की तैयारी करो, एक आखिरी परीक्षा देनी है ना।